శ్రీ చైతన్య చరితామృత మధ్యలీలా 19వ అధ్యాయ శ్లోకం నెంబర్ 144. తార మధ్యే స్థావర జంగమేభ్యద జంగమే త్రిజగ జల స్థలచర విభేద. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు స్వరూప గోస్వామికి శిక్షాదత్త సమయ జీవం కే సంబంధ మే బతా రహే హే కి కైసే జీవ భగవాన్ కే నిత్య అంశ హై ఔర్ ఇస్ భౌతిక శరీర ధారణ కర్కే సంసార మే ఆతే హై. तो इन जीवों में दो प्रकार के भेद माने गए हैं, स्थावर और जंगम. स्थावर जो नहीं चल पाते हैं और जंगम जो चल पाते हैं. तो जंगम जो जीव है उनमें तिर्यक योनि अर्थात पक्षी, जलचर और स्थलचर, ये तीन प्रकार के भेद हैं चलने वाला में. जो जल में रहते हैं, जो स्थल पर रहते हैं और जो आकाश में उड़ते हैं, तीन प्रकार के भेद हैं चलने वाले जीवों में. तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर तार मध्य लक्ष पुलिंद बहुध सबर. तो इतने सारे जीवों के बीच मनुष्य जो है ये बहुत कम है. कितना? 4 लाख. और उसमें भी बहुत सारे भेद हैं. कोई म्लच है, कोई पुलिंद है, कोई बौद्ध है, कोई सबर जाति के हैं. वेदनिष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुखे मने वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे. और जो लोग वेदनिष्ठ हैं मनुष्य जाति में अर्थात वेद को मानते हैं, तो उनमें कुछ लोग हैं जो वेदों को केवल मुख में ही मानते हैं किंतु वेद निषिद्ध पाप कार्य करते हैं. वेद को मानते हैं किंतु वेद में जो निषिद्ध पाप कर्म बताए गए हैं वही पाप कर्म करते हैं. और धर्म को ये लोग नहीं मानते हैं जो पाप कर्म करते हैं. धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ. तो कुछ लोग धर्म को तो मानते नहीं है यद्यपि मुख में केवल वेदों को मानते हैं और पाप वेद निषिद्ध पाप कर्म करते हैं. और कुछ लोग वेद को मानते हैं और धर्म का आचरण करते हैं. तो धर्म के आचरण करने वालों में अनेक कर्मनिष्ठ हैं अर्थात वो कर्म में प्रवृत्त होते हैं और कर्म का फल स्वयं भोग करना चाहते हैं. कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक अज्ञानी श्रेष्ठ. और इस प्रकार कोटि कर्मनिष्ठों के बीच यदि कोई ज्ञानी निकला तो उसको श्रेष्ठ माना गया है. अर्थात कोटि कर्मनिष्ठ धार्मिक लोगों के बीच एक ज्ञानी है जो ज्ञान में स्थित है.
कोटि ज्ञानी मध्य एक जन मुक्त
कोटि मुक्त मध्यम दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो इस प्रकार कोटि ज्ञानियों में, कोटि कोटि ज्ञानियों में कोई एक जन एक व्यक्ति मुक्त हो सकता है। इसका अर्थ है कि सभी ज्ञानी मुक्त नहीं हो सकते, कोई एकाध मुक्त होता है। और इस प्रकार कोटि मुक्त जो जन है उनमें एक कृष्ण भक्त निकल सकता है, क्योंकि अधिकतर ये लोग जो मुक्त जीव होते हैं ये ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, इसलिए वो कृष्ण भक्त नहीं हो सकते और अपने को मुक्त मानते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो उनमें से कोई एक कृष्ण भक्त निकल सकता है। तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ना, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेश भूतेषु मां मद्भक्ति लभते पराम। तो कोई भक्ति करने के लिए इस स्थिति को प्राप्त होना आवश्यक है, ब्रह्म भूत स्थिति। तो उस स्थिति में व्यक्ति सुख आने पर प्रसन्न नहीं होता है, दुख आने पर चिंतित नहीं होता है, दोनों में संभाव पोषण करता है। दुखे सुनोद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वित्त राग भय क्रोध स्थित धीम निरुच्यते। तो इस प्रकार ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। तो ये जो ब्रह्म में स्थित हैं तो हर समय वो प्रसन्न रहता है, तो वो कोई सोचना नहीं करता है, दुख प्रकट नहीं करता है या कोई कामना भी नहीं करता है। समान सर्वेश भूतेश सारे भक्त सारे जीवों के प्रति संभाव पोषण करता है, तब जाकर वो भक्ति प्राप्त हो सकता है। इसका अर्थ है कि भक्ति प्राप्त करने के लिए ये सर्वनिम्न आवश्यकता है, इस स्थिति को प्राप्त होना, उसके बाद जाकर हम भक्ति करेंगे। इसका अर्थ है कि हम बहुत किस स्थिति में हम इससे पता चल सकता है कि हम किस स्थिति में हैं। हम तुरंत सोच लेते हैं कि दीक्षा हो गई, हम भक्त हो गए। हम भक्त बनने के लिए साधना कर रहे हैं, अभी तक बने नहीं है भक्त, क्योंकि भक्त की स्थिति उच्च स्थिति है। तो इसलिए कहा है कि दुर्लभ कृष्ण भक्त। तो ये जो ब्रह्मज्ञानी है उनमें कोई एक कृष्ण भक्त निकल सकता है, स्थिति को प्राप्त हो सकता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव संत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले असंत। तो जो कृष्ण भक्त है उसकी कोई कामना नहीं है, भौतिक कामना नहीं है या भोग की कामना नहीं है, उसकी एकमात्र कामना है कृष्ण की सेवा करना। कृष्ण की सेवा करके कृष्ण को प्रसन्न करना एकमात्र कामना है। वो अपनी प्रसन्नता नहीं चाहता है कृष्ण भक्त, इसलिए उसको निष्काम बताया गया है। किंतु बाकी सारे लोग वो कामना युक्त है, अर्थात उनकी कुछ न कुछ कामना है, जैसे भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, जो भोग चाहते हैं उनकी कामना है, भोग की कामना। और जब भोग प्राप्त नहीं होता है तो असंत होते हैं, दुखी होते हैं। उसी प्रकार जो मुक्ति कामी है उनको मुक्ति की कामना है, अर्थात वो मुक्ति प्राप्त होकर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। ये भी एक भौतिक कामना माना गया है, ये भौतिक कामना है। तो ये और सभी लोग इस मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाते हैं और जो भी प्राप्त होते हैं वहां अधिक समय तक नहीं रह सकते। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पतंगतः पतंति अधो अनादृत जुष्मत अंग्रह, क्योंकि उन लोगों ने भगवान के रूप को स्वीकार नहीं किया है और भगवान को निराकार माना है, इसलिए उनकी ज्योति में ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं और वो ब्रह्म युति का पद यद्यपि आनंदमय है किंतु वहां अधिक समय तक वो नहीं रह सकते, क्योंकि वहां आनंद में एक रास्ता बहुरस्ता नहीं, और बहुरस्ता में ही आनंद है। तो भक्ति में बहुरस्ता है, भगवान की तरह तरह की सेवाएं हम करते हैं, एक प्रकार की सेवा हर समय नहीं करता, और एक प्रकार की सेवा करें भी उसमें भी आनंद आता है, क्योंकि व्यक्ति भगवान के साथ युक्त होने से वो भगवान की सेवा तरह तरह की सेवा वो कर सकता है, और उस सेवा में जो आनंद प्राप्त होता है ये ब्रह्मानंद से कहीं अधिक है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मानंद का एक सागर सेवानंद की एक बूंद के साथ भी तुलनीय नहीं है। तो भगवान की सेवा में जो आनंद भक्त को प्राप्त होता है ये ब्रह्म में वो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए वहां प्राप्त होकर उस स्थिति को फिर वो नीचे गिरते हैं, वहां अधिक समय तक नहीं रह पाते। इसलिए यहां कहा है कि ये सभी अशांत है, मुक्तिकामी सिद्धिकामी योगीजन भी उनकी भी बहुत ही कामनाएं हैं, योगीजनों की वो भी कुछ सिद्धि चाहते हैं, तो ये सब इसलिए अशांत है कि वो, क्योंकि वो भी जो सिद्धि चाहते हैं वो भी भौतिक सिद्धि है और भौतिक स्थिति में कोई शांति को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त न हो जाए। तो भक्त क्योंकि वो उसकी कोई कामना नहीं है भौतिक कामना या भोग की कामना, इसलिए वो निष्काम है और एकमात्र कामना भगवान की सेवा करना है, इसलिए भक्त ही शांत स्थिति को प्राप्त हो सकता, दूसरे लोग कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए सभी को अशांत बताया गया है और कृष्ण भक्त को शांत बताया गया। मुक्तानंग अपि सिद्धानंग नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटि स्वपि महामुने। तो कोटि कोटि मुक्त जो कि अज्ञानता से मुक्त हैं, मुक्त पुरुष और सिद्ध पुरुष, कोटि कोटि सिद्ध पुरुष जो लोग सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, उनमें से कोई एक शुद्ध भक्त बन सकता है और ऐसे शुद्ध भक्त संपूर्ण शांति को प्राप्त करता है और संपूर्ण संतुष्ट रहता है, बाकी लोग संतुष्ट या शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता अभिष। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं और भक्ति का जो महत्व है बता रहे हैं। तो कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, तो ये जीव सारे ब्रह्मांड में वो भ्रमण करता रहता है, कभी कोई शरीर ग्रहण करता है, और कभी इस ब्रह्मांड में जन्म लेता है, कोई दूसरे ब्रह्मांड में जन्म लेता है, इस प्रकार वो भ्रमण करता रहता है। एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, तीसरे ब्रह्मांड, एक योनि से दूसरी योनि, तीसरी योनि, तो इस प्रकार वो भ्रमण करता रहता है। तो उनमें से कोई यदि भाग्यशाली जीव है तो वो क्या करता है, गुरु और कृष्ण की कृपा वो प्राप्त होता है, और गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त होने से भक्तिलता का बीज वो प्राप्त हो जाता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, तो भक्ति का जो बीज है भक्ति लता का, वो केवल गुरु की कृपा से या कृष्ण की कृपा से प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। और वो केवल भाग्यवान जीवों को प्राप्त हो सकता है, सभी को नहीं। जो भाग्यशाली नहीं है वो गुरु या कृष्ण कृपा को प्राप्त नहीं हो सकता। और इस प्रकार ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं और दुख भोग करते रहते हैं। माली है यहाँ करे से ही बीजारोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। तो जिस प्रकार हम खेत में बीज बोते हैं, तो जो कृषक है वो जाता है खेत में बीज बो के आ जाता है, और ऐसे वो छोड़ नहीं देता है, वो देखता है कि वो बीज जो पड़ा है उसको पानी मिला या नहीं, उसका उसकी देखभाल करता है, तब जाकर कोई पौधा निकलता है उससे। तो उसी प्रकार यदि सारे ब्रह्मांड भ्रमण करने के उपरांत कोई अपने सौभाग्यवश गुरु या कृष्ण की कृपा को प्राप्त होता है, तो वो भक्तिलता बीज को प्राप्त होता है, और भक्तिलता बीज को प्राप्त होने पर उसको फिर माली जैसा बनना पड़ता है, क्योंकि बीज उगेगा तो उससे पौधा निकलेगा, और पौधा निकलने से उसका यत्न लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग पौधों को रोज पानी देते हैं, कहीं दूसरा कुछ निकल आया है उसको निकाल देते हैं, और जैसे कोई दूसरे पशु पक्षी नहीं खाए उसके उसकी भी देखभाल करते हैं, तो उसी प्रकार भक्तिलता बीज को भी देखभाल करने की आवश्यकता है। तो कहता है माली है यहाँ करे से ही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। तो जो व्यक्ति या जीव इस भक्तिलता बीज को प्राप्त होता है उसको माली बनना पड़ता है भक्तिलता बीज के संरक्षण के लिए। तो पहले वो क्या करता है, वो भक्तिलता बीज प्राप्त हुआ उसको बोया, तो उससे पौधा कैसे निकलेगा, उसमें जल देना आवश्यक है। तो भक्तिलता बीज से बीज से पौधा निकालने के लिए या भक्तिलता की सृष्टि करने के लिए उसमें जल देने की आवश्यकता है। तो भक्तिलता बीज का जल क्या है, ना श्रवण और कीर्तन, यही उसके लिए जल सदृश है। तो यदि हम भगवान की कथा का श्रवण नित्य प्रति करेंगे और कीर्तन करेंगे भगवान का, नाम कीर्तन और गुण कीर्तन लीला कीर्तन, ये नित्य प्रति होना चाहिए, और ये जितना अधिक होगा अति शीघ्र वो भक्तिलता बीज से पौधा निकलेगा। नहीं तो श्रवण कीर्तन नहीं होगा, बीज बो दिया और पानी नहीं दिया तो क्या होगा, बीज ऐसे सूख जाएगा या पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा, उससे पौधा निकलेगा नहीं। इसलिए जो भक्त बनना चाहता है या भक्ति करना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि उसको माली बनना पड़ेगा, और प्रतिदिन जिस प्रकार पौधे में हम पानी देते हैं उसी प्रकार इस भक्तिलता बीज में पानी देना आवश्यक है और वो पानी श्रवण कीर्तन रूपी जल है, कि भगवान की कथा का श्रवण और भगवान का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन आदि, ये प्रतिदिन होना चाहिए। तो इस प्रकार भक्तिलता बीज का हम सेचन कर सकते हैं, सिंचन कर सकते हैं। उपूजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, बिराजा ब्रह्मलोक भेदी परब्रह्म पाए। तो यदि हम निष्ठा पूर्वक इस प्रकार भगवान के कथा का श्रवण करते रहेंगे ध्यान पूर्वक, और भगवान का नाम कीर्तन करते रहेंगे, भगवान के गुण लीला कीर्तन आदि करते रहेंगे, तो उस भक्तिलता बीज से पौधा निकलेगा और धीरे धीरे वो पौधा बढ़ता हुआ वो बिरजा नदी को पार कर जाएगा। बिरजा नदी है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में जो नदी है, उसको बिरजा नदी कहा जाता है, और उसका उसका दूसरा नाम कारण सागर भी है। तो ये बिरजा नदी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत भगवान के धाम को अलग करती है ये बीच में। तो आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए बिरजा नदी को पार करना पड़ता है, तब जाकर कोई भगवान के धाम में जा सकता है। तो जब हम भक्ति लता बीज का सेचन करेंगे, सिंचन करेंगे जल से, तो क्या है, उसे पौधा निकलता हुआ भक्ति लता जो है वो निकलती हुई उस बिरजा नदी को पार कर जाएगी, अर्थात भौतिक जगत से। फिर पहले तो ये ब्रह्मलोक परम ब्रह्म परब्रह्म, ये बिरजा नदी को पार करने के बाद परब्रह्म आता है, तो उधर प्रवेश करेगी भक्तिलता। तबे जाए तदुपरी गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। तो इस प्रकार भक्तिलता की वृद्धि होते हुए ये पहले तो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक, उसको पार करके बिरजा नदी, इसके बाद परम में भगवान का धाम, उसमें पहुंच जाएगी ये भक्तिलता। और परम में पहुंच कर कहां तक जाएगी, भगवान कृष्ण के चरण रूपी जो कल्प वृक्ष है, तो उस कल्प वृक्ष तक ये जाएगी भक्तिलता। क्योंकि लता ये बढ़ती हुई किसी वृक्ष का आश्रय लेती है, क्योंकि लता अकेले नहीं टिक सकती, केवल वृक्ष के माध्यम से ही लता टिक सकती है। जैसे कहा गया कि बिना आश्रय नवर्तन्ते कविता बनिता लता, तो लता के लिए आश्रय चाहिए। तो भगवान कृष्ण के जो चरण कमल हैं, ये कल्प वृक्ष है, तो ये भक्ति लता जाकर उस भगवान के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष में वो चढ़ जाती है, उसका आश्रय ग्रहण करती है भगवान के चरण कमल का। और वो कहां पर है, गोलोक वृंदावन में।
तहां विस्तरित यहां फले प्रेम फल, यहां माली सचे नित्य श्रवण आदि जल।
तो वहां जाकर जब भक्तिलता पहुंच जाती है और भगवान कृष्ण के चरण रूपी वृक्ष में आश्रय लेती है, तो फिर और अधिक वृद्धि प्राप्त होती है, और वृद्धि प्राप्त होने पर उसमें फल लग जाता है भक्ति लता में, और वो फल क्या है, प्रेम रूपक, कृष्ण प्रेम रूपक फल वो भक्ति लता में लग जाता है। और यहाँ जो भक्त है वो माली है, तो ये फिर भी वो भक्ति लता का सेचन करता रहता है। ये नहीं है कि वृक्ष में फल लग गया और पानी देना आवश्यक नहीं है तो फिर वो लता सूख जाएगी, इसलिए ये चालू रहना चाहिए। श्रवण और कीर्तन रूपी जो जल है भक्ति लता में देना चाहिए।
यदि वैष्णव अपराध उठे हती माता उपाड़े वास छिंदे तार सुखी जायो पाता।
और इस प्रकार भक्ति लता का सिंचन श्रवण कीर्तन आदि जल से होता रहता है, और भक्ति लता बढ़कर कृष्ण चरण रूपी कल्प वृक्ष में आश्रय लेकर वहाँ प्रेम फल,
वहाँ प्रेम, हाँ
वहाँ प्रेम फल फलता है, अर्थात प्रेम फल प्रकट होता है। किंतु इसमें एक बाधा है, और वो बाधा क्या है कि जिस प्रकार बहुत सुंदर बगीचा है, बगीचा में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, कोई हाथी मतवाला हाथी आ गया और बगीचा में प्रवेश कर गया तो वो क्या करेगा, जितने भी पेड़ पौधे हैं सब नष्ट भ्रष्ट कर देगा, मतवाला हाथी जो है मत हस्ती, बगीचा नष्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो उसी प्रकार ये जो भक्ति लता वर्धित होकर भगवान कृष्ण के चरण कमल रूपी वृक्ष का आश्रय लेती है और उसमें प्रेम फल प्रकट होता है, ये नष्ट होने का डर भी है। और कैसे नष्ट हो सकता है, यदि कोई मतवाला हाथी आए उसको नष्ट करने के लिए, मत हस्ती। और ये मतवाला हाथी क्या है भक्ति मार्ग में, ये वैष्णव अपराध। यदि कोई भक्त भक्तिलता बीज का सेचन करते हुए भक्तिलता को प्रकट करता है, प्रेम फल तक प्रकट कर देता है, किंतु यदि वो वैष्णव अपराध करता है तो ये वैष्णव अपराध मत्त हस्ती के समान है, जिसके कारण मत्त हस्ती जैसे आकर वृक्ष को उखाड़ लेता है या उसकी डाली को तोड़ देता है। तो उसी प्रकार वैष्णव अपराध जो है ये हो सकता है कि भक्ति लता को पूरा का पूरा उखाड़ ले, अथवा उसको तोड़ दे, ऐसा हो सकता है। तो जिससे क्या होगा, अगर वृक्ष को कोई वृक्ष या लता को कोई उखाड़ दे या उसकी डालियों को तोड़ दें तो वृक्ष के पत्ता सूख जाएंगे और धीरे धीरे वृक्ष नष्ट हो जाएगा।
ताते माली जत्न करी करे आवरण अपराध स्थिर जैसे नहयो उद्गम।
इसलिए जो माली है अर्थात भक्त है उसको सावधान रहना आवश्यक है। इस प्रकार अपने बगीचे के वृक्षों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बगीचा में चारों ओर बाड़ लगा देते हैं या दीवार बना देते हैं किसी तरह की हाथी प्रवेश नहीं कर पाए। तो उसी प्रकार अपनी भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए हमें इस भक्ति लता को भी आबद्ध करना है अपराध रूपी हाथी से बचाने के लिए। इसका अर्थ है कि हम बहुत सतर्क रहें कि हमारा वैष्णव अपराध ना हो, जिससे कि हमारे भक्ति में बाधा उत्पन्न ना हो। किंतु यदि लतार अंगे उठे उपसखा भुक्ति मुक्ति वंश जत संख्य तार लेखा। तो एक तो है कि भक्त इस भक्ति लता को बचाने के लिए अपराध से, वैष्णव अपराध से दूर रहे, जिससे कि भक्ति लता बच सकती है। उसके साथ साथ भक्ति लता जब उगती है उसके साथ साथ कुछ और भी छोटे छोटे वृक्ष उगते हैं उसके आसपास। तो जब हम पानी देते हैं उसमें तो वो वृक्ष जितना पानी लेता है बाकी जो छोटे छोटे वृक्ष चारों तरफ उसके उगे हैं वो भी सब ले लेते हैं पानी। तो उसी प्रकार इसको उपशाखा बताया गया है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में उपशाखाएं क्या हैं कि भुक्ति मुक्ति वांछा। इस प्रकार भुक्ति मुक्ति सिद्धि तरह तरह की कामनाएं, भोग की कामना, सिद्धि की कामना, मुक्ति की कामना, ये सब उपशाखाएं हैं भक्ति लता की, जिसमें ये भक्ति लता बढ़ नहीं पाती है अच्छी तरह। यदि इस प्रकार की कामना जिस प्रकार वृक्ष के साथ साथ छोटे छोटे दूसरे वृक्ष भी उगते हैं तो वो वृक्ष बढ़ नहीं पाता जब तक हम उसको ना निकाले। उसी प्रकार हमारे मन में जो भोग की कामना है, मुक्ति की कामना है, सिद्धि की कामना है और इस प्रकार अनेक कामनाएं हैं, जब तक ये कामनाएं हैं तो भक्ति लता वृद्धि नहीं हो पाएगी। स्वच्छंद पूर्वक भक्ति लता में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि ये सब कामनाएं भक्ति लता की वृद्धि में बाधा डालेगी। इसलिए इन कामनाओं को उखाड़ के फेंकना है, जो भौतिक कामनाएं हैं इसको उखाड़ करके फेंकना है, तब जाकर भक्ति लता की वृद्धि हो सकती है। और ये जो इसमें कई तरह के कामनाएं हैं, कामनाएं, वासनाएं, आचार व्यवहार, ये सब भक्ति लता में बाधक है, उपशाखा है। जैसे निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसन, निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जत उपशाखागण। तो चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी बता रहे हैं कि ये सब उपशाखाएं हैं जो भक्ति लता की वृद्धि में बाधक है। तो ये भुक्ति मुक्ति वंशा निषिद्धाचार, जो शास्त्र में जिसको निषिद्ध किया गया है करने के लिए, मना किया गया है, यदि कोई उसको करने लगे भक्त तो उसकी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। उसी प्रकार कुटिनाटी, कुटिनाटी है कि किसी की निंदा करना या किसी की निंदा करना या किसी तरह कोई पार्टी पॉलिटिक्स करके किसी भक्त को नीचा दिखाना, इस कुटिनाटी में आता है। वो कैसे आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसके लिए कुछ बाधा उत्पन्न करना, ईर्षा, ईर्षा भाव, ये सब कुटिनाटी का अंश है कि दूसरे भक्तों के प्रति ईर्षा व्यवहार, उनकी निंदा, ये सब कुटिनाटी है। तो ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है, इससे बचना है। और जीव हिंसन, दूसरे जीवों के प्रति हिंसा करना, ये सब अनर्थ जिसको बताया गया, तो ये सब भक्ति में बाधक है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा, और स्वयं कोई चाहेगा भक्ति करके कुछ लाभ उसको मिलेगा इसलिए भक्ति करता है। जैसे कुछ लोग हैं कि इस कर्म में ज्ञान करने से पैसा मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, इसलिए ज्ञान करते हैं भक्ति के नाम पर, किंतु उनके मन में बहुत सारी कामनाएं हैं। लाभ पूजा, लोग सब आकर प्रणाम करेंगे, बहुत बड़े महाराज बहुत बड़े भक्त हैं, प्रणाम करेंगे, पूजा मिलता है, लाभ मिलता है, कुछ धन मिलता है भक्ति करने से, प्रतिष्ठा मिलती है, पद पदवी व्यक्ति प्राप्त होता है, तो इसलिए अगर भक्ति की जाती है तो ये भक्ति में बाधा है, इससे दूर रहना लाभ पूजा प्रतिष्ठा से। ये बताया गया है कि जो भक्ति करता है, क्योंकि भक्ति करने के साथ साथ ये सब आता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये सब आती है, किंतु भक्त को इससे बहजाना लाभ पूजा प्रतिष्ठा में आ रहा है सब, वो आनंद लेता है और भक्ति में अवहेलना करता है, तो वो भक्ति मार्ग से उसका पतन हो सकता है। इसलिए भक्त को हर तरह से सावधान रहना आवश्यक है। कोई उसकी प्रशंसा करे ना करे, कुछ उसको लाभ मिले ना मिले, कोई पद प्राप्त हो ना प्राप्त हो, कोई बात नहीं, केवल उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान कृष्ण की सेवा करना और उनको प्रसन्न करना। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी लक्ष्य उसको भक्ति मार्ग से भटका सकता है। इसलिए ये भक्ति लता की वृद्धि में इसे बाधाएं हैं और इससे भक्त को सावधान रहना आवश्यक है।
सेक जल पाया उपाशाखा बड़ी बड़ी जाए, स्तब्ध हया मूल शाखा बड़ी ते न पाए।
तो ये जो उपशाखाएं हैं, तो ये जल प्राप्त होकर ये सब बढ़ जाते हैं, मूल जो भक्ति लता है ये बुद्धि इसकी नहीं हो पाती। ये मूल भक्ति लता की वृद्धि रुक जाती है, बाकी दूसरी उपशाखाएं या दूसरे वृक्ष जो है ये बढ़ जाते हैं।
तो इसलिए प्रथम ही उपशाखार करे छेदन, तबे मूल शाखा बाड़ी जय वृंदावन।
तो इसलिए जो भक्त हैं वो यदि सावधान है तो पहले ही जो उपशाखा है उसको, उसका छेदन करता है, उसको काटता है पहले, अर्थात भुक्ति वांछा भोग की कामना, मुक्ति की कामना, सिद्धि की कामना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, कुटीनाटी और निषिद्धाचार, तो ये सब जितने सब उपशाखाएं हैं, तो भक्त पहले इसका छेदन करता है, काटता है पहले, तब जाकर उसकी भक्ति लता में वृद्धि होती है, नहीं तो वृद्धि वहीं रुक जाती है। और वो भक्ति लता तब जाकर उसमें वृद्धि होकर वो वृंदावन में पहुंचती है, नहीं तो वृंदावन में नहीं पहुंच पाएगी।
प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वाद, लता वलंबी माली कल्प वृक्ष पाए।
तो ये जो भक्ति लता में जो प्रेम फल होता है, कहां गोलक वृंदावन में, तो वो प्रेम फल ये माली जो भक्त है वो आस्वादन करता है। इतना सब यत्न लेने पर भक्ति लता का, तब जाकर प्रेम फल का आस्वादन करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं ना, हम इतने सालों से जप कर रहे हैं, इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, कोई हमारा गुस्सा नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हम लोगों ने उपशाखाओं को, उपशाखाओं का छेदन नहीं किया है, उपशाखाओं को भक्त के साथ बढ़ने दिया है, इसलिए प्रेम फल नहीं आ रहा है। तो ये सब करने सावधान पूर्वक इस प्रकार यत्न करने पर व्यक्ति उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो सकता है। और इस लता के, भक्ति लता के सहारे भक्त उस कल्प वृक्ष को, कल्प वृक्ष का अवलंबन प्राप्त हो सकता है, अर्थात भगवान कृष्ण के चरण को प्राप्त हो सकता है।
तासे कल्प वृक्षेर करे सेवन, सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन।
तो गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण का चरण सेवन करता है भक्त, जो भगवान कृष्ण का चरण कल्प वृक्ष के समान है, और बड़े आनंद के साथ वो प्रेम फल को, प्रेम फल का आस्वादन करता है, और इस प्रकार नित्य आनंद को प्राप्त होता है।
एत परम फल परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चरि पुरुषार्थ। तो इस प्रकार ये जो भक्ति का जो मुख्य फल है प्रेम, कृष्ण प्रेम, तो यही परम पुरुषार्थ है। अर्थात यदि व्यक्ति इस प्रेम फल को प्राप्त हो गया जीवन में, तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ को प्राप्त हो गया, उसका मनुष्य जन्म सफल हो गया। क्योंकि भौतिक संसार में साधारण रूप से ये चार पुरुषार्थों के बारे में बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। तो हर व्यक्ति इसी के लिए प्रयत्न करता है कि धर्म का अनुष्ठान करता है जिससे कि अर्थ की प्राप्ति हो, और अर्थ प्राप्त होने पर कामना की पूर्ति करता है काम, उसके बाद फिर मोक्ष के बारे में सोचता है। अवश्य आजकल केवल दो ही पुरुषार्थ रह गया, अर्थ और काम। तो ये जो चार पुरुषार्थ हैं, तो व्यक्ति चतुर्थ पुरुषार्थ को प्राप्त होता है जो मुक्ति है, और उसको श्रेष्ठ माना गया है। किंतु वस्तुतः मुक्ति भी अंतिम लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये जो मुक्ति की बात या मोक्ष की बात कही गई है, ये ब्रह्मलीन की अवस्था है, ये भी परम आनंद की अवस्था नहीं है। किंतु पंचम पुरुषार्थ या परम पुरुषार्थ जो कृष्ण प्रेम है, यही वस्तुतः श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, और ये परम आनंद, नित्य आनंद को प्रदान करने में समर्थ है। तो ये कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ या पंचम पुरुषार्थ कहा गया, और यही भक्त के जीवन का लक्ष्य है, उस पंचम पुरुषार्थ या परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्म समाधि ब्रह्मानंद गुरुरपि चमत्कार यति एवतावत् यावत् प्रेम्णां मधुरिपुरवासी करो मधुरिपुवसीकार सिद्धा सिद्धौ सधीनं गन्धोऽप्यनन्तकरणसरणी पंथतंग न प्रयाति।
तो जब तक भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम का प्रेम की गंध, थोड़ी सी भी गंध जो कि भगवान कृष्ण को नियंत्रित करने के लिए एक औषधि के समान है, जो कृष्ण प्रेम ये भगवान कृष्ण को नियंत्रित करने के लिए औषधि के समान है, क्योंकि भगवान कृष्ण प्रेम से ही नियंत्रित होते हैं, वशीभूत होते हैं, अन्यथा उनको कोई वशीभूत नहीं कर सकता। तो इस कृष्ण प्रेम की थोड़ी सी भी गंध व्यक्ति के हृदय में यदि उत्पन्न नहीं हुई है तो भौतिक सिद्धि या भौतिक रिद्धि सिद्धि या योगियों की सिद्धि या ब्रह्मभूत ब्रह्मानंद की प्राप्ति, ये सब जो भौतिक सिद्धियां हैं, ये सब साधारण लोगों के लिए ये बहुत आकर्षक लगती है। ये उन्हीं लोगों को आकर्षक लगती है, ये सब भौतिक रिद्धि सिद्धि आदि, मुक्ति आदि, क्योंकि उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति कृष्ण प्रेम की थोड़ी सी भी गंध उत्पन्न नहीं हुई है। जब एक बार कृष्ण प्रेम की थोड़ी सी भी गंध जो कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ है व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न हो जाती है, तो ये सब रिद्धि सिद्धि, ये सब मुक्ति, मुक्ति का आनंद, ये सब तुच्छ प्रतीत होगा। ये कहने का अर्थ है, जब तक प्रेम की गंध उत्पन्न नहीं हुई तो ये सब बहुत बड़ा लगेगा, बहुत अच्छी बात है, आकर्षक है, किंतु प्रेम की गंध उत्पन्न हो गई तो ये सब तुच्छ लगने लगे।
शुद्ध भक्ति हैते हय प्रेमा उत्पन्न, अतएव शुद्ध भक्तिर कहिए लक्षण।
तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं श्लोक रूप गोस्वामी से कि जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्ति का आचरण नहीं करता है तब तक ये प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इस प्रेम को, कृष्ण प्रेम को प्राप्त होने के लिए शुद्ध भक्ति का आचरण करना आवश्यक है। तो इसलिए अब शुद्ध भक्ति क्या है ये जानना आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध भक्ति करने से प्रेम उत्पन्न होगा, इसलिए शुद्ध भक्ति कैसे करना है, क्या है शुद्ध भक्ति, तो उसके बारे में, उसका लक्षण क्या है चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं।
अन्य विलासिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनं भक्तिरुत्तम।
तो ये शुद्ध भक्ति बता रहे हैं कि अन्य अभिलाष शून्य, ये उसी को शुद्ध भक्ति कही जाती है जिस भक्ति में कोई दूसरी अभिलाषा या कामना नहीं होती। अन्य अभिलाष अर्थात कृष्ण भिन्न अन्य कोई कामना नहीं है, केवल कृष्ण की सेवा के भिन्न अन्य कोई कामना नहीं। तो इसे अन्य अभिलाष में ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये सब आ जाते हैं, भोग की कामना है। तो अन्य अभिलाष शून्य इसलिए कहा गया है, किसी तरह का भुक्ति मुक्ति की कामना नहीं है, एकमात्र कृष्ण की सेवा की कामना, उनको आनंद प्रदान करने की कामना, वो शुद्ध भक्ति मानी गई है। तो अन्य अभिलाष शून्य, तो ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये सब जो अभिलाषाएं हैं, इससे जो भक्ति शून्य है और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो लोग भुक्ति के लिए, भोग के लिए कर्म आदि करते हैं, मुक्ति के लिए ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, तो ये सब शुद्ध भक्ति में ये सब शून्य है, ये सब नहीं रहता है। शुद्ध भक्ति में कोई कर्म और ज्ञान के प्रति भक्त आकृष्ट नहीं होता है, जो भोग और मुक्ति का कारण है उसके प्रति आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें वो कामना ही नहीं है। भक्त नहीं चाहता है मुक्ति, भक्त नहीं चाहता है भुक्ति भोग, भक्त सिद्धि नहीं चाहता है, इसलिए उसको ज्ञान कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है, या किसी भौतिक कर्म करने की आवश्यकता नहीं है जिससे कि भोग प्राप्त हो। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन, केवल भक्त क्या करता है, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करता है, कृष्ण का अनुशीलन करना अर्थात उनके आदेशों का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनको संतुष्ट करने की या प्रसन्न करने की इच्छा से सेवा करना, ये सब अनुकूल भाव है। तो भगवान जैसे बताते हैं कि मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामेव शशि सत्यंते प्रतिजाने पियोषि में, ये भगवान कृष्ण का आदेश है, भक्त इसको पालन करता है, ये अनुशीलन है कि सदा सर्वदा मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम प्रेम पूर्वक प्रणाम करो, मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि अंत में तुम ऐसा करने पर मुझको ही प्राप्त हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सारे धर्मों का परित्याग करे, केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो ये भगवान के कई प्रकार के उपदेश हैं भक्तों के लिए, तो उसको पालन करना अनुकूल भाव से, और भगवान को सदा सर्वदा प्रसन्न करने की कामना रखना सेवा के द्वारा, तो ये कृष्णानुशीलन है। भगवान की पूजा करना, उनको प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना, उनकी कथा का श्रवण करना, उनके नाम कीर्तन करना, अपने को उनका सेवक मानकर उनके चरणों में अपने को समर्पित करना, ये सब भक्ति के अंग बताए। तो अनुकूल लेना कृष्णानुशीलन, तो इस प्रकार अनुकूल भाव से जब व्यक्ति कृष्ण की भक्ति आचरण करता है तो यही उत्तम भक्ति है। और ऐसा कंस भी कर रहा था, कंस सदा भगवान कहते हैं सदा सर्वदा मेरा स्मरण करो, कंस तो सदा सर्वदा स्मरण करता था भगवान का, किंतु अनुकूल भाव से नहीं, प्रतिकूल भाव से, शत्रु मान करके, इसलिए कंस को हम भक्त नहीं कह सकते। यदि भी वो सदा सर्वदा स्मरण करता था, सोने सोते समय, खाते समय, बैठते समय, उठते समय, चलते समय, हर समय कृष्ण का स्मरण, क्योंकि उसको भय था कृष्ण आकर उसको मारेंगे, तो इसलिए सदा सर्वदा स्मरण करता था कृष्ण, किंतु प्रतिकूल भाव से, इसलिए वो उसको भक्ति नहीं कहा गया। समय हो गया है। ठीक है, समय हो गया, कल फिर आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे।